ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पांचवा स्कंद दूसरा अध्याय छह नंबर श्लोक श्रवण करेंगे। तामेवा दूरे मधुकरिमिव सुमनस उपजिघ्रंतिम दिविज मनुज मनोनयनाल्लाद दुखै गतिविहार बीड़ा विनयावलोक सुर सुरवराक्षरा वयवै मनसी नेनाम कुसुमायुधस्य विदधतिं विवरम निज मुख विगलितामृता सब सहास भासन मोद मदांध मधुकरनिक रोपधारोकरनिको रूपरोधेन द्रुतत्पद विन्नासेन बल्गुस्पंदन स्तन कलश कवर भार रसनाम देवी तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जड़वदिति होवाच। ये पद्य श्लोक है, मतलब गद्य रूप से इसका अर्थ ताम उसको एव निस्संदेह अविदुरे निकट ही मधुकरीम इव मधुमक्खी के समान सुमनसह सुंदर फूल उपजिघ्रंतिम सुंगती हुई दिवी दिविज स्वर्गलोक में उत्पन्न होने वालों का मनुज मर्तलोक में जन्म लेने वालों का मानह मन नयन नेत्रों के लिए आह्लाद प्रसन्नता दुघई उत्पन्न करती हुई गति अपनी चाल से विहार आमोद प्रमोद से बीड़ा लज्जा से विनय विनयशीलता से अवलोक चितवन से सुस्वर अक्षर अपनी मधुर वाणी से अवयवय शरीर के अंगों से मनसी मन में नेनाम मनुष्य के कुसुमायुधस्य हाथ में पुष्प धनुष धारण करने वाले कामदेव का विदधतिम करती हुई विवरम कर्णगत निज मुख अपने मुँह से विगलित उड़िलती हुई अमृत आसव मधुसदृश अमृत सहास अपने हंसी में भाषण तथा बोलने में आमोद प्रसन्नता से मदांध नेसे में अंधा हुआ मधुकर मधुमक्खियों का निकर समूह उपरोधेन उसके चारों ओर से घिरे होने से द्रुत शीघ्रगामी पद पाऊ का विन्यासेन भावपूर्ण पद चाप से बलगो कुछ स्पंदन गति स्तन उरोज कलश जलपात्र सदृश कवर बालों की चोटी भार भार रसनाम कर्धनी देवीम देवी को तत् अवलोकनेन उसकी दृष्टि मात्र से विवृत अवसरस्य अवसर पाकर भगवतः सर्वशक्तिमान का मकरध्वजस्य कामदेव का वशम वश में उपनीतः लाया जाकर जड़वत जड़ के समान इति इस प्रकार ह निश्चय ही उवाच ओ बोला। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। ओ अप्सरा, अप्सरा मतलब ओ अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। पूर्व चित्ती जो अप्सरा आई है, जहां अग्निध्र तपस्या कर रहे थे किस लिए? अपना इंद्र संयम करने के लिए। और वहां कौन आए? पूर्व चित्ती अप्सरा आए और उनका कैसे ध्यान भंग हो रहा है इसका वर्णन आज ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़ा सुंदर भाव है। देखिए ओ अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वो अपनी चपल गति लज्जा विनय चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्य के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वो बोलते तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके सांस लेने पर सांस का स्वाद लेने के लिए भौरे मदांध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केस उसकी करधनी तथा उसके जल कलस्तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वो अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। तात्पर्य से प्रभाव लिखते थे कितना सुंदर। इस श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से यह वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर स्त्री की गोती तथा हाव भाव उसके केस तथा उसके स्तनों नितंबों और अन्य अंगों की रचना न केवल पुरुष के मन को वरन देवताओं के मन को भी मोह लेती है। साधारण मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, देवताओं के मन को भी हर लेती है स्त्री के जो हाव भाव है। दिव्य तथा मनुष्य शब्द विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेत का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को वरन स्वर्गलोक के प्राणियों को भी मोहने वाला है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक के प्राणियों का जीवन स्तर मर्त्यलोक के जीवन स्तर से कोई हजार गुना ऊंचा है। अतः वहाँ की सुंदर स्त्रियों के शरीर पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों के शरीर से हजार गुना अधिक सुंदर है, हजार गुना अधिक लुभावना होगा। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि चाल तथा उनके नितंबों उरोजों और अन्य अंगों का मनोहर रूप न केवल पृथ्वी पर के वरन स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो उठता है। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वो पत्थर के तुल्य जड़वत हो जाता है। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वो पत्थर के तुल्य जड़वत हो जाता है। स्त्रियों के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाहता है। इस प्रकार स्त्री के सुंदर दर्शन तथा गोति मात्र से वो वैकुंठ लोक नहीं जा पाता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों को सुंदरियों के आकर्षण एवं भौतिकतावादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। उन्होंने प्रतापरुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि इस संसार में वो अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, निष्किंचनस्य भगवत भजनो उन्मुखस्य। जो ईश्वर की भक्ति में रत है और भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के सुंदर हाव भाव से तथा अत्यंत ध्वनि पुरुष के दर्शन से दूर रहना चाहिए। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिगमिशुर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनम अथ जोषितम च हा हंत हंत विषभक्षण तो भी असाधु। ओहो जो इस संसार सागर को तरना चाहता है और भगवान की निष्काम तथा दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री का दर्शन स्वेच्छा से विस्पान करने से भी जघन्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अतः जो भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उसे चाहिए कि वो स्त्री के आकर्षक अंगों तथा ध्वनि पुरुष की संपत्ति के विषय में तनिक भी ना सोचे। ऐसा सोचने से आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है, किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत स्थित हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करें। कृष्ण भावनामृत स्थित हो गया तो ये आकर्षण उसके मन को क्षुब्ध नहीं करते। बड़ा सुंदर श्लोक का भाव है कि राजा अग्निध्र प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए। राजा प्रियव्रत पुत्र को राज्य सौंप करके भजन करने के लिए चले गए। पुत्र भी मन को संयम करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन गए। अब वन में जाकर पूर्वचित्त नाम के एक अप्सरा, क्योंकि हमेशा परीक्षा आती रहेगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही आप आगे क्लास में जा सकते हैं, ये संसार का नियम है। तो किसी इसी प्रकार माया की तो परीक्षा हर क्षण परीक्षा होगी, तो परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हो सकता है? कोई अगर भगवान के आश्रय में है, कोई किसी का आश्रय भगवान है, फिर वो माया में घूमे, माया के राज, माया के गोद में रहे, वो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आश्रय होना चाहिए कि भगवान, हाँ भगवान के आश्रय करके अगर संसार में माया में घूमते रहे तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में काला कृष्णदास को लेकर गए, तो काला कृष्णदास जहाँ कुछ स्त्रियों के बस में चले गए थे, स्त्रियों के पास चले गए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उसको पकड़ करके लाया कि आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु, किसी कुसंग बस उस साइड से चले गए थे। इसी प्रकार जिसका आश्रय प्रभु हो उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भले माया में वो रहे, माया में खेले धूले सब कुछ करे, माया कुछ बिगाड़ नहीं सके। अगर कोई किसी का आश्रय माया हो, माया का आश्रय बनाया और भजन रात दिन भजन कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक भजन कर रहे, किंतु आश्रय क्या है, माया है, तो माया उसको घसीट करके भजन करने पर भी माया उसको घसीट करके एकदम मिट्टी में मिला देंगे। आश्रय माया को लेकर रखा है, हाँ इसलिए आश्रय को ठीक करना है। जब आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में युधिष्ठिर महाराज का बहुत ऐश्वर्य था, बहुत ऐश्वर्य, मतलब वही ऐश्वर्य देखकर देवतागण लालचाते थे, ऐसे संपत्ति हमारे पास नहीं है जैसे युधिष्ठिर महाराज के पास है। किंतु युधिष्ठिर महाराज आश्रय था श्री कृष्ण प्रीति, इतना संपत्ति रहने पर भी युधिष्ठिर महाराज के मन को माया में रमता नहीं था, माया में उसका मन लगता नहीं था, क्योंकि आश्रय प्रभु है। और आप देखेंगे चित्रकूट महाराज के प्रति बहुत संपत्ति थी, चित्र महाराज के पास भी बहुत संपत्ति के अधिकारी थे। जब अंगिर ऋषि आए क्या मांग कर बैठे, मुझे पुत्र चाहिए, संसार उस शिकार मैंने मांग किया, संसार की मुझे पुत्र चाहिए। अरे अंगिर ऋषि से अगर कह देते प्रभु को मुझे चाहिए तो अंगिर ऋषि खुश होकर उसको प्रभु से मिला देते कि ऋषि में ऐसे समर्थ होते हैं, किंतु उसने क्या मांगा, मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए उनको भगवत प्राप्ति में बहुत देर हुआ। किंतु युधिष्ठिर महाराज का मन निरंतर कृष्ण में लगा हुआ था, उस संसार के भौतिक सुख में क्या कुछ आनंद नहीं मिला। तो इसीलिए आश्रय को ठीक करना है, जब तक आश्रय ठीक नहीं होगा भजन करने पर भी भजन में अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग का कृपा, लोग बोले कृपा करिए कृपा करें, कृपा तो ऑलरेडी कर चुके ठाकुर जी, गुरुदेव ने कृपा करके नाम दिया, नाम धन किसने दिया, गुरुदेव ने दिया, सुंदर श्रीधाम में वास करने के सुजोग कर दे, तो कृपा छड़क क्या है इसमें, ये तो कृपा ही है। ब्रजवास नाम और सत्संग साधु संग ये सब कृपा है, कृपा मिल चुका है, कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कृपा हाथ में है, कृपा हमारे साथ है, किंतु कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो कृपा कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए कृपा का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे नाम मुझे मिला, प्रेम धन मिला, ये नाम के प्रति अनादर करने से नाम का जो रस है अनुभव वो सब चली जाएगी, अनुभव चला जाएगा। इसीलिए अनादर नहीं, कृपा का कभी अनादर नहीं करना। कभी नहीं कहना मुझे कुछ कृपा नहीं मिला, कुछ अभी तो कुछ नहीं मिला, मुझे पूर्ण रूप से सब कुछ मिला किंतु उसका मैंने आदर नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। उसकी आदर करना है। जैसे कपूर आप डिब्बा में रखिए, कपूर जो है डिब्बा में रखिए, उसका अगर ढक्कन देकर नहीं रखेंगे तो कपूर उड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसका अनादर करेंगे, कृपा का अनादर करेंगे, तो कृपा आपके पास आप रहने पर भी कृपा का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा आदर के साथ, आदरात अनुदिनम खलुसई बजुष्टा, हाँ, निरंतर आदर के साथ नाम लेने की श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदर के साथ नाम ग्रहण करें। श्रद्धा जो है ये भक्तों की जननी है। श्रद्धा रहित जो भक्त है वो अनाथ है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो भक्त अनाथ है, उसमें कोई बल नहीं है। आज जो भक्त श्रद्धा के साथ आदर के साथ प्रभु का नाम, प्रभु के धाम में रहने का सुजग, जिसके मतलब जैसे रस पी रहा है ऐसे अनुभव होना चाहिए, तब जाके इसका रस माने हृदय में जाके चुभे माने बरसेगा। हाँ, तो इसीलिए हम सबको एक ही विशेष बात पर, क्योंकि माया का बहुत बड़ा तेज गति है, माया से पार पाना भारी कठिन है। बड़े बड़े प्रभुपाद जी लिखे, मनुष्य की बात तो दूर रही, दूर रहा, हाँ, बड़े बड़े देवता को भी नीचे गिरा देते हैं माया, माया का शक्ति इतनी बड़ी है। तो इसलिए माया से पार पाने के लिए क्या करना है, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय, माया रे करिया जाए छाड़ा ना ना जाए। माया से कभी कोई पार नहीं हो सकते, एकमात्र पार वही हो पाएगा जो गुरु और कृष्ण का आश्रय में रहेंगे, तब वो माया से पार हो पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं जे जैसे जब इंद्र आए, जो क्या नाम अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, बहुत सुंदर थी कन्या, हाँ, पंचकन्या में नाम आता है अहल्या का, अहल्या कुंती द्रौपदी तारा और मंदोदरी, ये पंचकन्या है। तो कन्या मैंने हमेशा के लिए कन्या, तो देख के उसमें रूप में लोभायमन हुए, लोभी माने लोभायमन होकर उसका एक किया। फिर गौतम ऋषि ने अभिशाप प्रदान कर तुम पत्थर हो जा। तो कहने का उद्देश्य है देवता भी गिर जाता है काम के वशीभूत होकर। हाँ, तो इसलिए हम सबसे बड़ी ये है, काम कहाँ कहाँ रहते इसका निर्णय मतलब अपने खोज रखना चाहिए, कहाँ काम निवास कर रहा है। हाँ, इंद्रियों में जैसे हमारे इंद्रिया है, ये हमेशा विषय में घूम रहा है। आप विषय में जाकर विष आहार कर रहे हैं, हमारी जो इंद्रिया है ये विषय में जा रहे हैं। हर इंद्रिया जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है, इस विषय में क्या कर रहे हैं, इसमें विष ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, अब विष ग्रहण करते करते इसका सारा शरीर विष हो गया, विषमय हो गया। तो इसे विष से हटाने के लिए क्या करना है, कुछ औषध देना पड़ेगा। औषध है हरिनाम, एनेची औषधि माया नासी वारा लागे, ये माया से पार होने के लिए एकमात्र औषध है हरिनाम। ये जितना भाव से हे प्रभु मैं पीड़ित, हमेशा अपने को त्रिनादपी भाव से नाम ग्रहण करना चाहिए। त्रिनादपी सुनि चे न तरोरी व सही सुनना अमान न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। जो इस भाव से नाम को स्वीकार करेंगे तो उन नाम का अनुभव कर पाएंगे। यद्यपि नाम का हमारे अनुभव की विषय है, ये जो भक्ति जो है, जो नाम ग्रहण है, हर विषय में अनुभव करना है। हम सारा दिन भजन कर रहे हैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, भोर 4 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक नाम जप कर रहे हैं। अब विश्राम कहाँ, भजन हो रहे प्रभु का, अब विश्राम कहाँ हो रहे, विषयों में, नेट में, वर्तमान समय तो नेट एक बड़ा विषय है, वर्तमान समय नेट जो है, हाँ नेट इंटरनेट ये सबसे बड़ा विषय है। सारा दिन भजन हो रहा है किंतु नेट देखे बिना उसका नींद नहीं आती है। तो इसीलिए विषय को ठीक करने, आश्रय को ठीक करने से विषय ठीक हो जाएगा। तो अगर कम भजन हो, भजन बिल्कुल ही कम है किंतु आश्रय ठीक है, मतलब जो उसका शयन है, जो उसका आश्रय है, अगर प्रभु है, भजन कम होने पर भी उसका भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसका आश्रय, उसका जो शयन, उसका जो विश्राम वो प्रभु है। हाँ आराम सारा दिन भजन कर रहे हैं, परंतु जैसे चर्चा चार प्रकार, चर्चा कितनी प्रकार, चार प्रकार, एक है पाप चर्चा, दूसरा है परचर्चा, तीसरा है सार्थ चर्चा, अपने सार्थ के बारे में चर्चा, अपने घर परिवार कैसे सुखी रहे, कैसे कमाया जाए, सब कुछ अपने बारे में, किसी दुनिया के बारे में नहीं, यह है सार्थ चर्चा। और चौथा है परमार्थ चर्चा व भगवत चर्चा। तो तीन चर्चा निम्न कोटि के हैं और चौथा जो चर्चा है भगवत चर्चा है। ये जो हम लोग अखबार देखते हैं, जो नेट देखते हैं, इस सब पर चर्चा है, दूसरे की निंदा के अतिरिक्त क्या है इसमें? एक दूसरे से शुद्ध देश राग देश से भरा हुआ है जो अखबार, जो खबर कागज है, इसमें क्या है? इसमें कुछ तो है नहीं। अगर आप विचार करके देखें, इसे सिर्फ पर चर्चा है। श्रील गो कर्ण कहते हैं, अन्यस्य दोष गुणचिंत नमास मुक्ता, हाँ सेवा कथा रसमहु नितराम पिवत्तम। दूसरे के दोष गुण से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर आपके कथा में रस मिलेगा। आज कथा में रस ना मिलने का कारण क्या? कि हमारा रस और कोई किसी जगह से मिल ले रहा है। हाँ हम ब्रजवास में रस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा रस हमारा परिवार में, हमारा संसार में, हमारा माया जगत में हमारा आश्रय बना के रखा, इसलिए यहाँ रहने पर भी इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। जब ये ना होने से अगर आंखों में आंसू झरे कि आज मुझे ब्रजवास छूट रहे हैं, आज हमारा पूरा अच्छा से हरिनाम नहीं हो रहे हैं, आज हम ठीक से ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जब इसके सोचते हम आंखों में आंसू अविरल धारा आंसू गिरता रहे, तब जान मानो कि हमारे पति प्रभु की कृपा है, क्योंकि हम इसके बिना हमारा जीना भारी पड़ रहा है। हाँ तो इसलिए कृपा का अनुभव करने के लिए सत्संग की बहुत जरूरी है। सत्संग बिना विवेक ना होए, विवेक बिना ना होए प्रेम। हाँ इसलिए निरंतर प्रभु का, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करना चाहिए, निरंतर जीवा पर नाम होना चाहिए, जीवा वृंदावन ब्रजवास होना चाहिए, धीरे धीरे कृपा का अनुभव। एक जगह लिखे पतंजलि सूत्रों में कि किसी वस्तु से अनुभव करने के लिए उसका निरंतर और दीर्घकाल, आप नाम में अनुभव करना है तो आपको निरंतर करना पड़ेगा और दीर्घकाल तक करना पड़ेगा, तब जाके आपको नाम का नाम में अनुभव होने लगेगा कि नाम रसमय, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण तत्व नित्य शुद्ध। हाँ ये जो नाम जो है ये रसमय है, इसका अनुभव होगा तब जब आप निरंतर करेंगे और दीर्घकाल तक करेंगे। तो इसीलिए एक क्या हुआ जानते, जैसे एक बार नारद जी प्रभु सामने नारद जी बैठे हैं, तो प्रभु जी हंस दिए, प्रभु जी बहुत जोर हंसे, तो नारद जी पूछने लगे प्रभु आप क्यों हंसे, स्वाभाविक सामने बैठे हैं और आप हंस रहे तो पूछना स्वाभाविक है, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहे कि दो मित्र जा रहे थे, दो मित्र जा रहे थे कथा सुनने के लिए। दो मित्र कहाँ जा रहे थे? कथा सुनने के लिए। तो एक मित्र कुछ ही दूर जाकर उसका मन में कुछ विक्षेप आया, वो वेश्यालय में चला गया। कहाँ चला गया? मन विक्षेप के कारण वो वेश्यालय में चला गया। और एक भक्त सोचे कि मैं कथा सुनने के लिए आया, मैं कथा सुनने के लिए जाऊँगा, वो कथा में चले गए। तो कथा में जब चले गए तो कथा में कथा सुनते सुनते इसका चिंतन हो रहा है, किसका चिंतन हो रहा है? ये जो वेश्या जो गया, ये कैसे सुख में विहार कर रहा है, क्या कर रहा है, एक यहाँ का पूरा चिंतन हो रहा है। और जो वेश्या में गया वो कहाँ का चिंतन हो रहा है? अरे वो कितना भाग्यवान, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नालायक हूँ, हैं सारे अवगुण अपने ये कर रहे, उसका सद्गुण का दर्शन कर रहे। जब दोनों का मौत हुआ, जो कथा मौत का समय आया, मौत मर गए, दोनों शरीर छोड़ दिए, तो एक का गति जो कथा सुनने वाला है, जो कथा सुनने के लिए उसका गति कहाँ हुआ, नरक की ओर। भले कथा सुन रहे हैं किंतु चिंतन क्या कर रहे हैं, इधर के। आज जो वेश्या गमन कर रहे थे उनका गति अच्छी हुई, क्योंकि उनका चिंतन सद्भक्तों का सदचिंतन हो रहा था। तो इसीलिए चिंतन को सुधारना है, माया से पार करने के। प्रभुपाद जी लिखे कि ये आकर्षण सबके ऊपर है, कोई इस आकर्षण से कोई बचने वाला नहीं है, इस आकर्षण से कोई बचने वाला नहीं है। बात वही बाँच सकते हैं, मामेव ज प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति थे। तो इसीलिए माया से पार होना भारी मुश्किल, दुरत्तया। भगवान स्वयं ठाकुर जी ने कहा दुरत्तया, हाँ, किंतु इसका अभ्यास करने से, निरंतर और दीर्घकाल तक नाम जप करने से इसका जो वेग है, ये वेग धीरे धीरे से शांत हो जाएगा। पहले बड़ा रूप से आता है, फिर दूसरा बार जो वेग आता है वो कम कम होते होते क्षीण हो जाता है, फिर धीरे धीरे से प्रभु अपने अनुभव करा देते, साक्षात्कार करा देते, फिर धीरे धीरे से वो मुक्त हो जाते, प्रभु के चरण कमल प्राप्त कर लेते। तो जो मतलब ये जो आकर्षण है इस सब पर है, हाँ, ये आकर्षण से कोई मुक्त तो नहीं हो। कोई अगर ब्रज वास करे, ब्रज का जो प्रभाव है, इस प्रभाव से वो जैसे समुद्र है, नमक समुद्र है वा मीठा समुद्र है, उसमें कितने लाखों क्विंटल मतलब अरबों टन अगर आप नमक डाल दें मीठा समुद्र में, मीठा पानी में, और नमक को भी मिठास बना देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। समुद्र में अगर अरब टन अगर आप नमक डाल दीजिए मीठा समुद्र में, मिठास पानी में, तो उस सब मिठास पानी क्या करेंगे, इस नमक को मिठास बना देंगे। इसी प्रकार अगर हम प्रेम समुद्र, वृंदावन धाम जो है प्रेम समुद्र है, इसे भाले में कामी हो, मैं क्रोधी हो, मैं लभी हो, मैं दम्भी हो, होने पर भी ये प्रेम समुद्र का स्वभाव है, उसको प्रेम में डुबो देंगे। किंतु आपका एक नियम लेना पड़ेगा कि इसका आदर करना पड़ेगा, रोज निरंतर माने जब भी सुबह उठते ही रज में सिर झुकाना पड़ेगा। हे रज रानी, किसी प्रकार अपराध हो जाए, आप काय मन वाणी से किसी अपराध हो जाए, आप क्षमा कर दीजिएगा। रोज इस शब्द को आपको बोलना ही पड़ेगा, हे महारानी, हे रज रानी, हे ब्रज रानी, हैं आप मैं अज्ञ बालक जैसे हो, आप मुझ पर कोई अपराध हो जाए, आप क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करते 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 आप एक दिन उस रस को प्राप्त कर लें। माया मेतम तरंते, माया को वही पार कर सकते हैं जो प्रभु मायापति का शरण लेंगे। जो ब्रह्मचर्य है उसका पहले बहुत शरीर में तेज रहते हैं, शरीर में बहुत शक्ति है, वो माया आने पर भी माया से ग्रसित नहीं होते, क्योंकि उन्हें शरीर में बल है, बल के कारण माया को हटा देते हैं, माया से प्रभाव से मुक्त हो जाते प्राइमरी अवस्था में। जब वृद्धावस्था आ जाता है तो उस समय क्या होता है, मन कमजोर हो जाता है, मन कमजोर होने के बाद वो माया के शिकार हो जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य की दुर्दशा में बता रहे हैं। जब मन कमजोर हो गया, वृद्धावस्था जब हमें देखा गया एकदम बहुत माने बड़ी अवस्था में, मतलब माया के कवल में चले जाने को भी देखा मैंने, क्या होता है, मन कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के बाद वो माया का शिकार बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि जब जिस समय शरीर में तंदुरुस्त है, शरीर में बल है, उस समय भजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता नहीं, भोजन किसी प्रकार शरीर निर्वाह हो जाए, इतना मन शक्तिशाली हो जाए कि आखिरी अवस्था तक मन का तंदुरुस्त बना रहे, हाँ, मन का जो तेज, जो भजन का जो रस आखिरी दिन तक बना रहे। किंतु क्या होता है, हम लोग इसका प्राधान्य देते, भोजन का बेसी महत्व देते, भजन का महत्व कम कर देते। जब तक स्थूल शरीर रहेगा, स्थूल प्राण, एक सूक्ष्म प्राण और एक स्थूल प्राण जिसका है वो अधिक भोजन करेगा, कम भजन करेगा, उसका ब्रह्मचर्य जो छीन हो जाएगा। जिसका प्राण स्थूल है उसका भजन कम होगा, भजन बिल्कुल मतलब किसी प्रकार से जिए है नहीं बराबर, वो अधिक दिन तक ब्रह्मचर्य रखना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है वो क्या करेगा, भोजन सूक्ष्म करेगा, भजन अधिक करेगा, उसका प्राण वही सूक्ष्म रहेगा और वो धीरे धीरे से ब्रह्मचर्य को रक्षा कर लेंगे। ये ब्रह्मचर्य रक्षा के एक नियम है। ये शायद पतंजलि में कहीं पे लिखा होगा मेरे ख्याल से कि सूक्ष्म प्राण से ही ब्रह्मचर्य का, उसमें मन चंचल कम हो जाता है। जितना सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म होता जाएगा, मन का जो चंचलता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखे, अगर कोई किसी को भगवत धाम जाना है तो नारी के आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा, भले गृहस्थी हो और विरक्ति हो। गृहस्थी ऐसे नहीं उसके लिए लाइसेंस है और विरक्ति है उसके लिए निषेध है। सबके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य, हाँ सबके लिए। बिना ब्रह्मचर्य पालन किए हुए कोई भगवान के पास जा नहीं सकते, एकदम 100% इसका सत्यता है। तो इसलिए किसी प्रकार से मन को चंचल ना होने देना, हाँ मन का चंचल ना होने का सरल उपाय है कि निरंतर प्रभु का नाम, जो विषय में विष स्वीकार कर रहे, आहार कर रहे, उससे आहार से मुक्त करने के लिए विषय विष आहार करे, करने दीजिए, किंतु धीरे धीरे उसका नाम का भी रेस बढ़ाना पड़ेगा, नाम की भी संख्या धीरे से जैसे समय मिले, जहाँ समय, समय का भी जो ध्यान रखता है वही महात्मा है, और जो समय को व्यर्थ गवा देते वो दुरात्मा है। महात्मा दुरात्मा का परिभाषा यही है, जो समय को व्यर्थ चले माने गवा देते, व्यर्थ नष्ट कर देते वो दुरात्मा है। क्योंकि ये भगवान के तरह दिया हुआ ये मनुष्य शरीर जो है भगवान की कृपा से ही मिला, इसी शरीर से ही भजन हो पाएगा, दूसरे शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। तो कृपा से मिला, कृपा का आदर करना चाहिए। जो समय मिला इस समय का भी आदर करना चाहिए कि एक एक क्षण, क्षण त्यागे, क्षण को त्याग करने से विद्या नहीं होता है। कोई अगर क्षण को त्याग कर दे, क्षण को आदर ना करे, उसका विद्या नहीं होगा। और जो कण का त्याग करे धनवान नहीं होगा। कण 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 इकट्ठा करके कोई धनी होता है, हाँ, और कोई क्षण क्षण के इकट्ठा करके कोई विद्वान बनता है, हाँ। इसीलिए क्षण का और बहुत आदर करे, एक एक क्षण हमारे जा रहे हैं, हमेशा ही ध्यान रहे, सबसे में अनुभव करें। मैं अपना अनुभव एक कुछ सुनाता, एक दो घटना। जिस समय मैं 95 में मैं गया था प्रचार में, अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये हमारा जोन था, हमारा संकीर्तन ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का ये साइड जोन था, मतलब इस साइड हम लोग घूमते रहेंगे। तो वहाँ बिल्कुल फॉरेन कल्चर, पहाड़ी एरिया, वो बिल्कुल फॉरेन कल्चर, मतलब विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो संस्कार है, उस समय जहाँ पे आप जाएंगे पहाड़ी एरिया में सर्वत्र यही देखेंगे, पूरा स्वाभाविक माने स्त्री पुरुषों का आकर्षण। तो इससे देखकर मन चंचल होता था, मन बहुत विक्षिप्त होता था, तो कि अब जाना ही पड़ेगा ग्रंथ देने के लिए, किसी के पास जाएंगे तभी तो ग्रंथ देंगे, हाँ घर में बैठे मैंने बैठे रहने से कैसे ग्रंथ जाएगा। तो जहाँ पे जाते थे वही ये आकर्षण का दर्शन होता था। तो मैंने सोचा कि इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, भाई सारा दिन भर प्रचार करेंगे यही देखेंगे, रात में अच्छा चिंतन थोड़ी होगा, जो देखेंगे सारा दिन भर वही तो चिंतन होगा, जैसे खाएंगे वैसे तो डकार आएगा, न डकार की दूसरे डकार आएगा, हाँ। तो इसीलिए जो दर्शन करता था वही रात को वही चिंतन। तो मैंने एक भक्त, सीनियर भक्त से कहा कि ऐसे ऐसे घटना है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना गुरु का स्मरण करते रहिए, गुरु का अनुभव। शिल प्रभुपाद अब हाउस में देखना, शिल प्रभुपाद जहाँ उनका आसन बेड है, कृष्ण वाला उनके पास में रखा, अनुभव करते, ठाकुर जी हमारे पास है, अनुभव। जब तक अनुभव रहेगा हर कण कण, जैसे परम पूज्य रमेश महाराज बोलते थे, मैं उनका प्रवचन से सुना कि वहाँ तो 100-150 लड़कियाँ नृत्य करती हैं शाम के टाइम, मतलब उनका एक आराधना है, नृत्य आराधना। तो बाबा बोलते हैं कि मैं हर स्त्री लड़की को श्री जी के स्वरूप मानता हूँ, इससे वो भाव नष्ट हो जाता है। श्री जी के ही परिकर, श्री जी के ही स्वरूप अगर जब मान लेंगे तब अब वो भाव, वो दूषित भावना ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ब्रज धाम में जो भी है लड़की माता है सब ही श्री जी के ही है, श्री जी के ही स्वरूप है, महारानी के ही स्वरूप है, हाँ। इस भावना से रहने पर भी, रहने से ही आप काम वासना से मुक्त हो पाएंगे। भजन साधन करके आप काम वासना से जय नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि मैं लाखों दो लाख पाँच लाख नाम कर लेंगे तो हम माया से पार हो जाएंगे, ये कभी नहीं संभव, कभी संभव नहीं है। संभव है कि अपना दृष्टि को बदलना है, सृष्टि का बदल नहीं सकते। दृष्टि क्या कि हर माताओं को श्री जी की स्वरूप माने। ये परम पूज्य रमेश बाबा की मैं इस बात सुना रहा हूँ, एकदम सत्य बात है। बाबा इतना सत्य मतलब एक ब्रज की विभूति है, तो उन्होंने कहा कि हर लड़की को हर माताओं को ब्रज श्री जी के ही स्वरूप माने। हाँ, इसका अनुभव करने का अभ्यास करें। एक दिन में तो संभव नहीं है, धीरे से अनुभव करते 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 ये आपका आखिरी दिन तक यही चित्त में बस जाएगा। हाँ, तो इसीलिए समय को ध्यान रखें। प्रभुपाद जी यहाँ और एक बात लिखे कि किसी का अगर भगवत धाम जाना है तो उसको इस आकर्षण से मुक्त होना है। इस आकर्षण से मुक्त होने का सरल उपाय क्या है कि अपना चिंतन को, अपना भावना को बदलना है। हाँ, निरंतर और दीर्घकाल तक नाम ग्रहण करना है। जैसे हमारा आश्रय प्रभु है, हमारा विश्राम विषय है, तो धीरे धीरे से विषय ठीक है, प्राइमरी अवस्था में विषय विश्राम हो सकता है, धीरे धीरे से उसको कृष्ण में लाना है। वर्तमान समय बहुत कठिन है भजन करना। वर्तमान समय ऐसे दूषित वातावरण छाए मतलब प्रभाव फैल रहा है, आप आगे चलकर भजन करने ही नहीं देंगे आपको। अगर इससे अगर भजन नहीं हो पाएगा, आगे चलकर भजन होने ही नहीं देंगे। आप छोटे छोटे बच्चा को नेट पकड़ा दिया, उसमें क्या उसका बुद्धि खूब कम दिनों में दूषित हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे वहाँ दृश्यावली है। बड़े बड़े व्यक्ति को घायल कर देते तो उस छोटे छोटे व्यक्ति क्या उसमें क्या है, हैं? बड़े बड़े मैंने अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े बाबा है उसको घायल कर देते नेट से, हैं? अरे साधन हमारे जैसे एक संत सुना रहे थे कि जब पहले पृथ्वी में जो भजनशील है बहुत भजन करते थे, तो अप्सरा आती थी स्वर्गलोक से गिराने के लिए कि इसको जाके गिराओ। ऐसे होता था पहले अप्सरा आते थे, यहाँ से काम नहीं चलता था उसको गिराने के लिए। कहाँ से लाना पड़ता था? स्वर्गलोक से लाना पड़ता था उसको गिराने के लिए। तो बोले आजकल क्यों नहीं आते? आजकल तो आना चाहिए, आजकल ऐसे भी महात्मा है। बोले आजकल यही से काम हो जाता है, यही से काम चल जाता है, वहाँ तक जाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए सावधान इस आकर्षण से, आकर्षण से मुक्त होने के लिए दृष्टि की बदलना है। अगर नेट देख रहे हैं ठीक है, मैं जब नेट देखने के एक अभ्यास बन गया, वहाँ श्री जी का ही स्वरूप माने, वो जैसे आचरण करे जैसे ही व्यवहार करे उसी से ही श्री जी का ही स्वरूप देखे, तो धीरे से आपको वासना जागृत नहीं हो पाएगा। एक बार जब हनुमान जी लंकापुरी में गए सीता जी को ढूंढने के लिए, तो वहाँ एक भोग सज्जा का दर्शन हुआ। लंकापुरी में एक भोग सज्जा माने दर्शन हुआ, तो वहाँ एक महाभारत में श्लोक है, कोई अगर इस प्रकार दर्शन हो जाए उसका सारा पुण्य छीन हो जाएगा। तो भाई थले हनुमान जी को चला गया, नहीं अगर उसको देखकर काम वासना जागृत हो जाए तब तो सारे पुण्य सब कुछ नश्चित मलिन हो जाएगा, सारी पुण्य छीन हो जाएगा। अगर उसका अगर भावना ठीक बैठा ले कि ये महारानी के स्वरूप है, श्री जी का ही स्वरूप है, इस प्रकार भावना करते करते अपना पत्नी तक भी मतलब आपने इतना पवित्र भावना हो जाएगा कि नहीं यार इस संबंध को पवित्र बना के ही रखना है। हाँ, इसका आगे चल, क्योंकि मुझे भगवान के पास जाना है। हाँ, अगर आप सोचेंगे नहीं नेट देखकर वातावरण देखकर अगर आप मन को कलुषित करके रखेंगे तब आप भगवान के पास जा नहीं पाएंगे। भगवान के पास जाने के लिए शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध मन के लिए बहुत जन्मों जन्मों की साधना चाहिए। हाँ, एक क्षण में इस मन को दूषित कर सके, एक सेकेंड में। जैसे अजामिल पवित्र कुल में उनका जन्म हुआ था, अजामिल साधारण नहीं थे, किंतु एक दृश्य देखकर एक शुद्र शुद्राणी का आलिंगन देखकर उनका मन नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी प्रकार दृष्टि एक संतों लिखते हैं कि तीन द्वार है नरक का, एक आँख को संभालना है, एक कान को संभालना है, एक रसना को संभालना है। ये तीनों का अगर संभाल लेंगे मतलब बचा लेंगे विषय आकर्षण से आप बच जाएंगे। एक कान से मैं प्रभु की कथा देखिए यार थोड़ी समय बचा को चाहे ज़्यादा दिन नहीं यार, थोड़ी समय रह गया, खूब आखिरी समय पहुँच चुका है, हैं, इसको किसी प्रकार से व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। कान में सुनेंगे तो प्रभु का ही कथा सुनेंगे, देखेंगे तो प्रभु का ही रूप देखेंगे, और साथ लेंगे तो कुछ बोलेंगे तो प्रभु का ही चर्चा करेंगे। और दो चार साल, पाँच साल, किसी किसी का 10 साल, 15 साल रहा होगा, तो इसको किसी प्रकार से मैंने, क्योंकि यही सुंदर वातावरण मिले, और मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं, और मानव शरीर मिले ना मिले, ये भगवान बहुत करुणामय है। आप हमेशा भगवान की करुणा पर विचार करिए। अगर मुझे मनुष्य शरीर ना देकर कोई निम्न जोनी दे देते, हम भजन कर पाते, ये ब्रजवास की आस्वादन कर पाते, ये संत संघ का कोई अनुभव हो पाता? प्रभु की बहुत करुणा है। एक माँ, माताओं में उनकी करुणा एक बूंद सारा जगत की जितनी माताएं हैं सब में बांटा हुआ है। तो आप देखिए एक माता में कितनी करुणा है एक बच्चा के प्रति। तो ऐसे अनंत करुणा सिंधु श्री कृष्ण, उनकी कितनी वात्सल्यता है। ये जीव कितना लाखों लाखों जोनी घूम रहे हैं, इसका अभी तक कल्याण नहीं हुआ, इसका कल्याण के लिए एक मनुष्य शरीर दे दो। हाँ, प्रभु ने कृपा, प्रभु करुणा का अनुभव करना पड़ेगा आपको, जो प्रभु सत्य कृपामय है, मुझे कृपा करके दिया, इसका आदर करना है। हमारे तरफ से क्या करना है, इसका आदर करना है। आदर जब करेंगे आप, इसका कुछ कम ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपका, 1-2 साल में इसका अनुभव कर लेंगे, ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल आप इसका आदर करिए, 1 साल ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से 1 साल अपने शरीर का, जो मनुष्य शरीर मिला इसका क्या लक्ष्य है, इसका 1 साल तक आप आदर करिए। इसका नाम, जो प्रभु ने नाम दिया, धामवास दिया, किसी कारणवश आज जी वहाँ जाना है, धांधा देखना है, व्रत छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे तैसे सूखा रोटी किसी पेट भरने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। पेट तो ही भरना, पेट को ही तो भरना है, ये महारानी व्यवस्था कर देंगे। अगर आप उनके आश्रय में रहेंगे ना, आपको इतनी बढ़िया, मतलब इतने अच्छा अवस्था पर रखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप बाहर जाकर भी इतना अच्छा से अपने मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनकी आश्रय में रहे, हाँ, उनका आश्रय में, उनके आश्रय में रहेंगे तो आप बहुत बहुत सुखपूर्वक, बहुत शांति से, बहुत स्वच्छता से आप अपना निर्वाह कर पाएंगे। ये जितना तोड़ मोड़ चल रहे हैं अभी वर्तमान समय वृंदावन में, बहुत बहुत तोड़ चल, मतलब तोड़ मोड़ चल रहे हैं। हाँ, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, महारानी बोलाया ठीक, कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। श्री जी ने बोलाया, अपने अपनी इच्छा से मैं नहीं आया यहाँ, मैं ब्रज में आया किसकी इच्छा से, श्री जी की इच्छा से आया, महारानी की इच्छा से आया, ठीक निश्चित व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, उनके भरोसा, हाँ, उनके भरोसा में चले, निश्चित आप अपना विशेष एक अलौकिक दर्शन करेंगे कि नहीं, सचमुच महारानी की कृपा मुझ पर है, मुझे आदर करना है इसका। इसे किसी मतलब खिलौड़ा ना समझे, खूब हल्कापन ना ले, इसका बहुत कीमती समझे। मनुष्य भी बहुत कीमती है, बहुत जो प्रभु का नाम बहुत कीमती धन है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो मुझे मिल गया, अरे क्या मुझे क्या चाहिए, एक एक, एक मतलब हृदय में प्रफुल्लता, एक जैसे छाती है ना कभी कभी एकदम बड़ा हो जाते हैं, अरे मुझे क्या नहीं मिला, क्या संसार के धन में क्या रखा है, भले मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, किंतु मेरे पास नाम धन है, इसका मैं एक एक कण कण करके बहुत जमा कर लेंगे। हैं, तो इस प्रकार से आदर करें, कृपा का कभी अनादर ना करें। कृपा का अनादर करने से कृपा उड़ जाएगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। तो यही पे आज श्रील प्रभुपाद जी कहे कि आकर्षण सब पर है, ये आकर्षण से मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए जो साधन दिया प्रभु ने दिया, इसका अपनाना है। ये है आज की कथा की सार्वत्ता। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की। किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, फिर कभी सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।